તારીખ 10/5/1992 શ્રી દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રકાશ બોલ નંબર 270 થી 274 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 119.
किसी भी कार्य की जवाबदारी लेना तो हमारे लिए बड़ा पार होता है, बहुत बुरा लगता
है।
तो किसी भी कार्य की जवाबदारी लेना तो हमारे लिए बड़ा पहाड़ आए। नैसर्गिक परिस्थिति होती है, क्योंकि जवाबदारी में बना रहता है, यानी मुक्ति के मार्ग में चल रहे हैं, उनको कहीं भी बाह्य कार्य की जवाबदारी उठा करके अपने आप को बंधन में रख देना ऐसा वो कभी स्वीकार करते हैं। बंधन को स्वीकार, जवाबदारी को स्वीकार करना मतलब बंधन को स्वीकार करना। और ऐसी बातों में बोझा कितना लगे कि ये काम मुझे करना है, मुझे करना पूरा करना है, तो पहाड़ उठाने जैसा बहुत बोझा लगे। छोटे मोटे बाह्य कार्य भी बोझा लगे तो जिसमें जवाबदारी का बंधन हो जाए, जिम्मेवारी आ जाए सिर पे, ये तो बहुत बड़ा बोझा लगे। कोई भी जिम्मेवारी लेना, कोई भी कार्य की जिम्मेवारी लेना, ये पहाड़ जैसे बोझा उठा। परिवार की भी जिम्मेवारी दी है, अपनी अशक्ति के कारण वो प्रवृत्ति में लगते हैं, जूझते हैं, लेकिन उनको करना नहीं है, वो बंधे हुए नहीं है। दुर्गय का एक दृष्टांत बहुत बढ़िया है, जीवंत दृष्टांत है। जब गुरुदेव ने 1991 में परिवर्तन किया और सोनगढ़ में स्थिरता की, तब लोग वहां आने के लिए संख्या बढ़ने लगी। जब संख्या बढ़ने लगी तो लोगों को, समाज को ये विचार आए, आने वाले समाज को, तो यहाँ एक स्वाध्याय की व्यवस्था सुविधा बन जाए तो अच्छी बात है। तो 3 साल में 1994 में इस स्वाध्याय मंदिर का नींव शिलान्यास किया। तो उस वक्त गुरुदेव ने बोला कि आप लोग यहाँ पैसे खर्च करते हो, इसलिए मुझे यहाँ रहने का प्रबंधन दिया। क्या मैं आप लोगों का बंधन में रहने वाला? महाराज यहाँ विराजते हैं तो अपन खर्च करो, पर खर्च करे तो फिर महाराज कहाँ जाएंगे? फिर यहाँ ही रहेंगे, क्योंकि इनके लिए तो खर्च किया। आप लोग यहाँ खर्च करते हो, इसलिए मैं यहाँ रहने के लिए बंधन में नहीं हूं। हमारा तो परिणाम अगर बदल जाएगा तो ये जो सामने डूंगर देखते हैं पर हार माला, हम तो इसमें चले जाएंगे, क्या जंगल में चले जाएंगे? हमको मकान में ठहरे साफ कितना था, मुझे जैसा की भावना थी, मुझे स्थानीय वासी का मुनिपना छोड़ा, और भिन्न दिगंबर मुनिपना की भावना से निर्गिन की तो आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे, पुरुषार्थ के लिए लालायत विलासित है, तो हमारे परिणाम फिर जाएंगे तो हमको उधर चलेगा। देखो रहने का, काम करने का नहीं, रहने का भी बंधन नहीं, काम तो कोई करते नहीं थे, जो जैसे व्याख्यान देते थे तो वो अपना स्वाध्याय करते थे, बंधन नहीं, कोई बंधन
नहीं,
जवाबदारी नहीं, मुनियों को तो होता ही नहीं, मुनि तो जी चाहे तो वचन उच्चार हुए, विकल्प नहीं आए तो वाणी भी नहीं। और संगति करने वाले भी अच्छी तरह समझते हैं, तो बोलेंगे तो अपने को लाभ मिलेगा, नहीं बोलेंगे तो भी अपने को लाभ मिलेगा। क्या 30 नंबर में दर्शन मात्र से और उसकी मौन मुख मुद्रा से भी उपदेश मिलता है। मुझे शुरू शुरू में नवाई लगती थी, संकट देता था तो जारे कोई रविवार है सज्जा हुआ मैंने भक्ति स्वाध्याय करें, आत्मसुद्धि शास्त्र का पद हो, समय सार का पद हो, पदार्थ पद्य अनुवाद हो, प्रवचन सार का पद्य अनुवाद हो, तो संख्या बहुत कम होगी संकट में, मूर्खों की संख्या हमारे गरीब से कम हो जाए। हम लोग आपस में चर्चा करते थे ऐसा यहाँ क्यों होता है, तो रजगुर्गो का व्याख्यान नहीं है ना, जैसे कोई भावनगर चले जाते हैं, कोई नहीं आते, कोई देर से आता है, कोई हम आपस में उन दिनों में चर्चा की, ये कैसे बात है, गुरुदेव तो विराजते हैं, गुरुदेव तो है ना, वो खुद स्वाध्याय में बैठते हैं, तो दूसरे को नहीं बैठने करता स्वाद तो उचित नहीं लगता, तो उसी वक्त उचित नहीं लगता। बोले तभी तो उपकार करते हैं, नहीं बोले तभी भी
उपकार करते हैं,
कार्य करते हैं। तो हमने तो कुदरती नहीं अनुचित लाभ होते, इसलिए हमें वहाँ पे कोई समाज था समझ में तो हाँ हो जाए मानस होता नवा नवा तो हमें आपस में ही चलता करता। मैं गड़बड़ी तो शुरू से ही है, थोड़ी बात तो शुरू से ही बात नहीं है, उसमें से ये बात निकलती है कि किसी भी बाह्य कार्य में अपने परिणाम मर्यादित होते हैं, बंधन बढ़ाना नहीं है, बंधन जितना कम हो गए उतना अच्छा, बंधन बढ़ाना जो जो महाराष्ट्र स्वयं का योग मिला है वो परम योग है। क्या है
योग?
जो जो महाराष्ट्र स्वयं का योग मिला है वह परम योग है। कितनी महिमा है, क्योंकि परम स्वभाव की प्राप्ति का कारण है, मामूली बात नहीं है, महाराष्ट्र स्वयं का योग मिला है वो कोई मामूली बात
नहीं है,
नहीं है। चलो आज व्याख्या नहीं, हम सब्जी लेने को चले जाए, ये बात नहीं है, क्या करे सुबह सुबह सब्जी लेने पहले तो अच्छी मिलती है, बाद में तो क्या है तो लोग ले जाते हैं तो बाद पीछे रह जाते हैं, वो क्वालिटी अच्छी नहीं रहती। अच्छी अच्छी तो लोग चुन चुन करके ले जाते हैं, कैरी हो तो कैरी चुन चुन करके ले जाते हैं। अच्छी सब्जी अच्छी मिले तो स्वाध्याय और गुरुदेव का सानिध्य, सब्जी जितना भी कीमत। अरे कोई 5 मिनट लेट आवे, कोई 15 मिनट लेट आवे, कोई 20 मिनट लेट आवे, आधा आधा घंटा देखो तो लोग भी आते रहे। क्या कारण? वहां तो कोई धंधा नहीं है, व्यापार नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, कारखाना नहीं है, एक सिर्फ अपने को नित्य कर्म स्नान आदि करके निपट करके आना है। तो शरीर की प्रयोजन है, क्या है शरीर की प्रयोजन? जितने भी पुस्तक में शरीर की प्रयोजन इतनी हो कि समय पर वो अपना साधन में उपस्थित नहीं रह सके, सत्शास्त्र का गुरु का विनय नहीं रहे, ऐसे नहीं हो रहा है तो दरकार नहीं है। इसमें ज्ञान प्राप्त होने के कोई अवकाश नहीं रहता, सब समय और शक्ति फाल को करा रहा है। कहते हैं कि ये जो महाराज साहब का योग मिला है वो परम योग है। सबको गुरुदेव बोले नहीं, हमारे एक भी हमारे सिद्ध गुरु तो व्याख्यान चालू थी गई थी, बस में पंचर थी गई थी, मेरे को पर वस्तु मॉडल थी गई थी, जैसे टाइम इतना राख कर दिए कि पंचर में उनका शासन दिख रहा है कि अर्धी कलाक के रस्ता में खोते को खाए तो एक अर्धी कलाक के गाला पंच में दिए ये गमन मारे तो ना हमें बात करी है तो मैं बस बस मॉडी आ गई हूँ પછી તો ચટપટી થાય એટલે માણસ લેવા મોકલ્યા, ટાઈમસર પહોંચે એવું તો હતું પણ એમાં પંચર થયું તો કોઈ બી ન ચાલે મારું પછી આવડે પાછું તમને આત્મી થતી હશે કે બધાને બધી લોકો આવા વાળા હતા, મારા કોઈ બી આવીએ નહીં એટલે કહી દેતા કહી દીધું એટલે બાકી તો બધા ક્યાં ગાડીના ડબાની જેમ બારખાના ડબાની જેમ ગમે ત્યારે આવતા કોઈ કહે નહીં ક્યાં એવી રીતે, પણ એક ઉપરથી બધાએ સમજી જવું જોઈએ, ક્યારે કોઈ એકને કહે તો બધાએ સમજી જવું જોઈએ, તો એનું કોણ દરકાર કરે? ગુરુદેવની વાતની એટલું કોઈ દરકાર નતા, એ રમી ચાલુ જ હતો, એ મોડા આવે મોડા જ આવે, આ દુઃખ થઈ જાય ને। ये महाराज साहब का योग मिला है वो परम योग है, क्योंकि परम स्वभाव की प्राप्ति का कारण है, ये जगत की सर्वोत्कृष्ट चीज की प्राप्ति। स्वभाव मैंने क्या, परम स्वभाव मैंने, परम मैंने परम उत्कृष्ट, परम उत्कृष्ट स्वभाव की प्राप्ति का योग है, ऐसी कीमत आनी चाहिए। कारखाना फैक्ट्री होता है वहां टाइम पर आने का मजबूरी होती है, तो वहां ऐसा एक व्यवस्था होती है कि जो आदमी वहां एंटर होता है उसको अपना कार्ड चेंज कराना पड़ता है, उसमें टाइम लग जाता है, टाइम पंच हो जाता है, 9 बजे का टाइम हो 9-10 बजे आवे तो कार्ड में पंच नहीं होगा, इसके पहले आगे तो टाइम बराबर आएगा, तो जैसे कैसे भी उसको पहुंचना ही पड़े, एक दिन लेट आवे तो उसका पगार में कटौती हो जाए, चार पंखा में कटौती हो जाए, 5-25 रुपया कट जाए पड़ा, तो 5-25 के लिए तो टाइम पर पहुंचना, और आत्मा के लिए 5-25 जितनी भी कीमत कितना मामूली बात कर दिया, जिनके में कितना मामूली हो गई, तो 5-25 रुपया जितनी भी आत्मज्ञान का निमित्त हो ऐसा जो शास्त्र का स्वाध्याय किसके लिए करते हैं, अपने लिए तो करते हैं, इसलिए कि परम स्वभाव की प्राप्ति का कारण ये है। हमारे साहब तो जगत गुरु है, जगत गुरु भव्य शंकर है, इसलिए जगत गुरु श्री कृष्ण भगवान भव्य शंकर होने वाले हैं। महाविद्य क्षेत्र में धातु के खंड में आज से तीन भव के बाद चौथे भव में तीर्थंकर द्रव्य है, तीर्थंकर सरस्वती का विदेश इस भव में आएगा। तो अभी से भावी नैगल में से कहते हैं कि महाराज साहब तो जगत गुरु है, जो अकेले सिद्ध लोक में नहीं जाते, तो सिद्धालय में जाएंगे तो साथ में बहुत से जीव केवली होकर के सिद्धालय में जाएंगे। जो अकेले सिद्ध लोक में नहीं जाते, बहुत से जीवों को साथ लेकर जाते हैं, बहुत से जीवों को साथ लेकर जाते हैं, मैं इसके साथ बहुत से जीव सिद्धि को प्राप्त करेंगे, ऐसा ही मुझे बचेगा। जो पात्र होंगे वो ठिकाने आ जाएंगे ऐसे। और यहाँ के अधिकांश लोग साथ में चलने वाले हैं, अभी पात्रता नहीं दिखे, पात्रता गर्भित हो, पीछे दिखने वाले हो, लेकिन ऐसे पंचम काल में ऐसे महापुरुष का योग हुआ है तो बहुत से लोग यहाँ से भी भावी समूह शरण के मेहमान बन जाएंगे। ऐसा तो कार्यता है। हमारे लिए तो तीर्थंकर से भी अनिल तीर्थंकर का योग मिला, हमें ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई थी। अभी भी तो कितना लाभ हुआ कि शीघ्र सिद्ध पद में हम पहुंच जाएंगे, इतना लाभ हुआ। वेदना होती है थोड़ी बहुत, तो अभी आदमी ऐसा बोलता है वेदना होती है इसको पता चलता है, जिसको वेदना नहीं होए उसको सुन करके क्या पता चलेगा, बोलने वाला तो ये बोलेगा तो हमको तो वेदना होती है, लेकिन वेदना मैंने क्या, तो ये वेदन की चीज है। तो भाषा मात्र से कोई समझ में आ गया दूसरा को ज्ञान हो जाए ऐसा तो कांटा आ गए ना, कांटा क्या कहते हैं, कांटा एक कांटे के वेदना हो ना लग जावे पैर में, कांटा तो निकाल देवे, कहते हैं किसकी वेदना है कि कांटा का मार है उसको दुखता है, मार लग गया ना उसकी वेदना भी बोल नहीं सके। तो जिसको अनुभव का दुख मिट जाए उसको सुख की वेदना कितनी, इसमें से ये सब बात निकली। तो शुक्र हो गया सारे जगत से भिन्न पड़ गए, दिखाएंगे भिन्न पड़े थे 70 लाख के आबादी में मैं अकेला सुखी हूँ। कलकत्ता में ये पता है 70 लाख में बस्ती होती, ये तो धंधो करवा दिया क्या रहे, मैं तो रहवा माटे रूम थी, मैं तो धंधा ऊपर बैठा माटे दुकान थी, तो शनि के दिन माटे धर्मशाला में फ्री ऑफ चार्ज जहाँ रही सके त्या उतरे, 5-15 दिन खाए जो रूल हो तो बीजी धर्मशाला तो बीजे शनि के दिन बदली नाखे, तो मुनि वही बाबू जी हमारा तो टाइम हो गया, आप कोई दूसरी व्यवस्था कर लो, दो चार महीने के बाद आ जाना, आप तो और 15 दिन ठहरा देंगे बाजार में जावे सैंपल लेकर के, माल तो होवे नहीं, गोडाउन होवे नहीं, दुकान होवे नहीं, मिल वाले के संबंधी से कपड़े का सैंपल लेकर के बाजार में घूमे, ऑर्डर ले ले, तो माल सप्लाई करे, कमीशन मिले। क्या बोले उस वक्त कि ये सारे 70 लाख की आबादी में मैं अकेला आत्मिक अंदर स्थित गुण का जो परिणाम है उसका प्रवाह था, उसका अनुभव तो देख लिया कि ये जो बाहर की परिस्थिति है वो मेरा जीवन नहीं है, कि मेरा जीवन ही नहीं, ये तो एक खेल है जो मैं देख रहा हूं। क्या है
खेल देख रहा हूं?
ये पूर्व कर्म का खेल है, बस मुझे देखने में आता है, मैं तो उसका देखने वाला प्रेक्षक हूं। तो बनारसी दास क्या कहते हैं उसको, तमाश गिर कहते हैं, पूर्व कर्म का ये तमाशा है और इस तमाशा का मैं देखने वाला बात खत्म। हमारे में कुछ लेना है न कुछ देना, परिवार का सबका क्या, क्योंकि उनके कर्म लेकर के आए हैं, क्या वो भी उनके कर्म लेकर के आए हैं, वो भी क्या वो जिंदा थे वहां तक तो कोई पैसा जैसे इतना नहीं हुआ, रहने के खाने की व्यवस्था हो चुकी थी, बाकी कोई पैसा बैसा नहीं था। बाद में अभी लड़के लोग संपन्न हो गए सब, बिना पिताजी की मदद से सब संपन्न हो गए, तो अपना मुकदर लेके आए हैं कर्म तो अपने अपने, कोई किसी का गर्व कर देता है सो बात
नहीं है,
पर उम्र भी इतनी नहीं थी, 52 साल की उम्र आजकल कोई उम्र नहीं गिनी जाती, तो दो ही बड़े थे मेरे साल रमेश भाई जी, दोनों थोड़े बड़े, उनकी उदासीनता थी, पूरी उपस्थिति नहीं थी, तो वो लोग संभाल के थे लड़के खड़ा हुआ, तो उनका तो निवृत्ति का विचार चलता था, लड़के जब थोड़ा बहुत संभालने लगे तो उनका तो निवृत्ति का विचार चलता था, बताया था मैंने, तो मैं तो निवृत्ति ले लूंगा, तो संभालते हैं थोड़े बहुत, तो मैं बात खत्म होती है, रस तो खाई आयु पूरा हो गया, यह सब तत्व की बात विकल्पात्मक रूप से ध्यान देने से शांति नहीं मान लेना, क्या विकल्प वाली समझ में आ जाने से शांति मैंने संतोष नहीं मान लेना, क्या है कहीं को तो समझ में ही नहीं आता है, बुद्धिपूर्वक का विपरीत संस्कार इतना जबरदस्त डाला हो कि समझाने वाले मिले तो अपन समझे नहीं, वो हानि भरे नहीं, ऐसा नहीं वैसा हो, हमको ये बात नहीं बैठती कि बुद्धिपूर्वक की विपरीतता तीव्र है, तो किसी को थोड़ा बहुत प्रयास करने से समझने की बुद्धि होने से देर सवेर देर सवेर में आ जाता है, तो जिसको बुद्धिपूर्वक का इतना विपरीत संस्कार नहीं हो गया मेरे समझ में, तो सुनते ही उसको सम्मत हो जाता है कि बात तो बिल्कुल न्याय पूर्ण ठीक है, ऐसी बात होनी चाहिए, वस्तु स्वरूप ऐसा ही होता है, ऐसे अनेक प्रकार के भी होते हैं, फिर भी जिसको समझ में आवे उसको भी संतोष मान लेना नहीं चाहिए, अवैध दृष्टि प्रकट करना। क्या करना? अवैध दृष्टि प्रकट करना। जो ये तत्व समझ में आया है वो अपना स्वरूप है, तो स्वरूप के साथ दृष्टि की अभेदता हो जाए, सिद्धांत की अभेदता हो जाए आत्म तत्व के साथ, वहां तक कहीं भी संतोष मान लेना तो अटकने का रास्ता है। आगे बहुत सी बात आएगी, वो तो सुनते ही चोट लगनी चाहिए। ऐसे चोट लगे थे अपना काम चालू कर दे रहे तो अवैध दृष्टि प्रकट करना, शांति मान लेना नहीं। और ये बात भी असम स्वभाव की बात ऐसी है कि जिसमें अनंत शांति भरी है, तो अनंत शांति का जो पिंड है इसकी बात करने से भी थोड़ी साता की शांति तो आ जाती है, फिर भी ये शांति मान लेने के लायक है। मूर्खां होती है तो जीव अपने की भूतकाल की पहले वाली पुरानी अवस्था को देखता है कि जब मैं ये बात नहीं तत्व की समझता था तो मुझे बहुत आकुलता होती थी, मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं क्रोधित था, मैं ऐसा था, मैं ऐसा था। अभी ये बात सुन लेने से मुझे ऐसा नहीं होता है तो मुझे लाभ मिल गया। क्या हो गया?
लाभ मिल गया
मुझे, गुरुदेव के लिए बात सुनने से लाभ मिल गया, मुझे तत्व की प्राप्ति हो गई, मुझे ज्ञान भी हुआ और ज्ञान का फल में शांति भी हुई। ये विकल्पात्मक बात में ऐसी शांति मान लेनी ये बड़ी भूल है, बड़ी भूल है। और एक नई भूल है, जो भूल पहले नहीं थी ऐसी भूल हुई, ऐसी भूल करनी नहीं चाहिए। हाँ, ऐसी भूल होने से योग्यता आगे बढ़ेगी नहीं, लेकिन योग्यता में वो पीछे
आ जाएगा।
ये बात है, कहीं भी अटके तो कुछ हो जाता है। अकृत में चर्चा सोचती है कि मनुष्य को पुराना होना, क्या पुराना नहीं होने का? पुराना पर होने से कहीं भी अटका है तो पुराना होता है ना। पुराना कब होता है? कि अटक गया, इसका मतलब क्या हुआ? अटक गया, और अटक गया वो पीछे गया क्योंकि जानकारी बहुत हुई तो रस कम हो गया। ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मैं जानता हूँ, तो रस कम हो गया, जिज्ञासा कम हो गई। रस और जिज्ञासा कम होने से भावना कम हो गई, और भावना कम होने से फिर सारी गड़बड़ी उत्पन्न होने वाली ही है। ये बात समाज में मैं पुराना मुमुक्ष है हूँ, ये पुराना मुमुक्ष हूँ बिना मुमुक्ष हो, ये क्रेडिट है कि डिस्क्रेडिट है? गुरु भाई को बोला था मुझे तो हमारे से भी पुराना है, इसका मतलब क्या हुआ? क्रेडिट है कि डिस्क्रेडिट है? सीनियरिटी नहीं होती है यहाँ तो, पुराना होने से जूनियरिटी आती है, सीनियरिटी नहीं आती है लेकिन जूनियरिटी आती है। अलौकिक मार्ग है, लौकिक मार्ग नहीं है लेकिन अलौकिक मार्ग है। ऐसे
तो
दृष्टांत झुकवाई का है, बाकी सबके लिए लागू करते
हैं।
दृष्टांत आप उनका ले लिया, बाकी सबके लिए लागू करते हैं, सबके लिए लागू होता है
वो तो सबके लिए। कानून तो सभी के लिए एक होता है, इनके लिए ये कानून और उसके लिए वो कानून, ऐसे का नियम तो सबके लिए एक ही है। नियम किसी के लिए बदलता
नहीं,
नहीं। दो सौ मौके हुआ, दो सौ पहुंचे। असल में आत्मा कैसे प्राप्त होवे, यही एक ध्येय होना।
क्या
असल में आत्मा कैसे प्राप्त होवे, यही एक ध्येय होना चाहिए। दूसरी दूसरी बातों में क्या प्रयोजन करते हैं, बिल्कुल शॉर्टकट मुझे मेरी आत्म प्राप्ति का प्रयोजन है, दूसरा कोई प्रयोजन मुझे नहीं। आत्म प्राप्ति में जो भी अनुकूल है वो मुझे अनुकूल है, और जो प्रतिकूल है वो मुझे प्रतिकूल है। आत्म प्राप्ति का कारण, उस कारण का कारण बस ये मुझे अनुकूल है। परमार्थ, परमार्थ की प्राप्ति, परमार्थ प्राप्ति का कारण, उस कारण का कारण बस मेरा स्वरूप निश्चित। अनुभव का कारण कौन,
स्वरूप निश्चय।
और स्वरूप निश्चय का कारण कौन,
सत्संग।
स्वरूप निश्चय का कारण
सत्संग।
यहां तक मेरा प्रयोजन है, इससे आगे मेरा कोई प्रयोजन
नहीं है।
सब सोए का मन ले लो, सीधी साधी बात है। क्या है, हर बात में बात को अपने हृदय में बहुत आएगी, हर बात में वो देखेंगे मेरे आत्म प्राप्ति में अनुकूल है कि नहीं है, मेरे ध्येय के अनुकूल है कि नहीं है। अनुकूल है तो जुड़ेगा, अनुकूल नहीं है तो वो दूर हो जाएगा। बस उतना ही देखना, उससे ज्यादा देखना और देख सकता है। सिर्फ अपना प्रयोजन में तो दृष्टि शिक्षण होगी होगी, और वो भी ये जीव का स्वभाव है कि जहां भी अपना प्रयोजन निश्चित होता है वहां उस विषय में उसका ज्ञान सूक्ष्म होता है, और प्रयोजन भूत विषय को आदरें अपेक्षा करें और सबकी उपेक्षा करें, ऐसा उसका जो दृष्टिकोण है वो तीक्ष्ण हो जाता है, पैना हो जाता है, पैनी दृष्टि हो जाती है, तीक्ष्ण। सूक्ष्म और तीक्ष्णता दोनों उसको प्राप्त, अपने प्रयोजन के विषय में ये बिना रहता तो दोनों की जा जाती है। ये जीव का स्वभाव में है, जी है। इसलिए ध्येय बदल देना चाहिए, ध्येय को बदल देना चाहिए। ध्येय बिना का कोई होता नहीं, जिसको आत्म प्राप्ति का ध्येय नहीं है उसको संसार के पदार्थों का प्राप्ति का ध्येय हुए बिना रहता नहीं। बात अटपटे कहां हो जाती है कि कुछ लोग ध्येय नहीं बदलते हैं और सारे संसार का त्याग करता है, संयोग का दीक्षा ले लेते हैं, साधु हो जाते हैं, दीक्षित साधु हो जाते हैं, पर अंदर में ध्येय नहीं बदलते। तो वहाँ उनकी दृष्टि अपना हित में कार्यकारी रहती, कहाँ अपना प्रयोजन सिद्ध होगा आत्म प्राप्ति का, कहाँ अपना अप्रयोजन की बात है उसको तो अच्छी तरह दोनों को दो उसका मैच नहीं होना, क्या बाइफर्केशन होना जिसको कहते हैं, वो कर सकता है, दो ही तो चीज है, इसलिए बाइफर्केशन करते हैं, हित रूप है या अहित रूप है, मेरा प्रयोजन से कुछ कैसा संबंध है, उतना जो देख सकता है उसको दूर नहीं होती, प्रयोजन के विषय में जिसका दृष्टिकोण स्थूल है उसका भूल हो जाएगा, जिसका दृष्टिकोण सूक्ष्म है उसकी भूल होगी, किसको सूक्ष्म होगा कि जिसका ध्येय बदला, ध्येय नहीं बदला उसको सूक्ष्मता आने वाली नहीं, बस ये सब दिखा देगा। देव में इतनी बात रही है, ये और प्रयोजन से सीधा संबंध है, और कार्य पद्धति में भी उसी का बहुत बड़ा प्रभाव है, ये का बहुत बड़ा
प्रभाव है।
इधर स्वरूप में दृष्टि आते ही सुख के स्रोत बहने, यही अपना अनुभव की बात किया है, तो जो अनंत सुख का भंडार है, दृष्टि उधर जाती है तो दृष्टि के भंडार का कब्जा भी ले लेती है, और फिर इस सुख के सरोवर में से सुख का स्रोत चालू हो जाता है, प्रकाश में दिखते भी दिखते हैं कि आत्मा तो आनंद सरोवर है, क्या है
सरोवर,
आत्मा एक आनंद का बड़ा सरोवर है कि जिसका किनारा देखने में नहीं आता, इतना बड़ा सरोवर है, पानी 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 पानी, ऐसा बड़ा सरोवर हो गया, ऐसा आत्मा एक आनंद सरोवर है, और आनंद की लहरें उसमें उठती है, क्या होता है सरोवर में, क्या होता है आनंद की लहरें चलती है, कहते हैं कि जब दृष्टि उसमें आती है आनंद का स्रोत, आनंद की लहरें चलने लगेगी, और जब मेरा परिपूर्ण सुख मेरे में है और परिणति इसके साथ भेद है, तो चिंता का एक ही पत्र में लिखते हैं कि जब परिणति मेरे सुख भंडार के साथ भेद है तो फिर चिंता किसकी चिंता है, मुझ को चिंता किसकी होती है, दुख की होती है, प्रतिकूल संयोग में दुख माना है, अनुकूल संयोग में सुख माना है, तो दुख की चिंता होती है, तो कहते हैं कि अनंत सुख का भंडार तो मैं हूं, अनंत शांति का भंडार तो परिणति उसके साथ है, अब कोई चिंता मुझे करनी नहीं। यानी तो एक क्षण के बाद क्या होगा इसकी चिंता होती, और अज्ञानी के पास सारी जिंदगी का खर्च निकले उतनी संपत्ति होने के बाद भी उसको भविष्य की चिंता मिटती, मिटती नहीं है, मिटती नहीं है तो चालू रहती है, ये ज्ञानी अज्ञानी की निशानी है, ये तो निशानी है, बनारसी दास बहुत सुंदर बात लिखते, जिसमें सार पे नाटक लिखते लिखते ये बात बहुत सुंदर दिखती है, मुझे तो पद नहीं आ गए, बहुत भाववाई बात लिखती है। ये ज्ञान विज्ञान का रक्षण है, वो कभी कल की चिंता नहीं करते, कल की का एक घंटे के पीछे बात क्या हो गया उसकी चिंता वो
नहीं करते।
क्यों नहीं करते? कि उसके पास तो अपनी आत्मिक दैवी विभूति की संपत्ति परिपूर्ण भरी है, शाश्वत और अभ्यावास, कोई इसमें बाधा डाल सकता
नहीं।
इसकी चिंता करे तो क्यों चिंता करे? परिवार की तो चिंता हुए तो नहीं हुए क्या? लेकिन ज्ञानी को अपना परिवार कभी होता नहीं। क्या ज्ञानी को अपना परिवार कभी होता नहीं? जो उसका कहलाने वाला अपना है उसमें उसको अपनापन मालूम होता
नहीं।
दृष्टि बदल गई जगत के प्राणी में, बात खत्म। ये जगत के प्राणी हैं, पूर्व कर्म वशिष्ठ निकट के संयोग में आए हैं कुछ काल तक, कितना
कुछ काल तक
आए हैं, तो बिखर जाएंगे, संयोग भी बिखर जाएंगे। मेरा कोई न हुआ था कोई है न होने वाला भी, बात खत्म। ये भी अपने पूर्व कर्म लेकर के आए हैं, मैं इसकी चिंता क्यों करूं? जब ये भी अपने पूर्व कर्म लेकर के आए हैं तो मैं इसकी चिंता क्यों करूं? अभी गाते थे कि जब कूत कपूत है तो इसके लिए करना क्या, पर जब कूत सपूत है तो फिर इसके लिए करना क्या? या तो कपूत होगा या तो सपूत होगा, दो में से एक तो होगा, तीसरा था कोई स्थान नहीं, उसी के लिए तो कोई करने का सवाल नहीं रहता। उनको अपने पुत्र की भी चिंता नहीं होती। ये बात
परिवार
नहीं, खोटी बात ना पाड़ी थी मैंने कि हमें कोई माते कहीं करता, हमारा पूर्व कर्म ની નિર્જરા કરવા માટે જે કઈ કરીએ છીએ તે કરીએ છીએ, બાકી અમારે એમાંથી છૂટે લેવું નથી, અમારે કોઈ ની અરે કામે નથી, ચોખ્ખું પ્રાણી રેવાશંકર જગ્યા રેવાશંકર ભાઈ પ્રાણજીભાઈ તો ડોક્ટર હતા ઈદરમાં, રેવાશંકરનું કાંઈ દેણું છે તે ચૂકવવા માટે રહ્યા છીએ, રેવાશંકરનું કાંઈક દેણું છે માટે ચૂકવવા માટે રહ્યા છીએ, એવું જ કુટુંબ પરિવારનું કે કાંઈ લેણ દેણ ચૂકવવા માટે રહ્યા છીએ, હિસાબ ચૂકતે કરવા આવ્યા છીએ, ખાતા બધા સરભર કરીને અહીંથી ચાલ્યા, બાકી કાંઈ અમારે લોકો લેવા માટે પ્રવૃત્તિ કરે છે, અમે કાંઈક દેવા માટે કરી રહ્યા છીએ, બસ લખ્યું છે ઊંધી દ્રષ્ટિ હું જો જોયું લેતો સુધી દ્રષ્ટિ એ સુધી જોયું વાત પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિમાં નિર્જરા કરે એના કરતા પ્રવૃત્તિ મારે ઘરે કરી એ પણ લખ્યું છે, ધન્ય આરાધનામાં કેવી વાત કીધી છે એવું શું ચાલે આપણે અનુભવમાં દેખાય છે કે ઇધર દ્રષ્ટિ આતે હી ભીતર મે છે સુખ કે સ્રોત કે સ્રોત બહેને શાંતિનું ઝરણું ચાલુ થાય છે, આત્મા મે છે શાંતિ ઝરતી હૈ, બસ ફિર જીવ કો ક્યા ચાહીએ ઓર ક્યા ચાહીએ, બાત ખતમ। Mm-hmm.
ભગવાન નો જય પરમ.